आस्था ने रश्मि के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और बड़े अपनेपन से कहा था, दीदी हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तभी आस्था नम आंखों से बोली थी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। रश्मि दीदी अब आप बिल्कुल ठीक हैं और अब आप पूरी तरीके से रेस्ट करेंगी, हमने डॉक्टर से बात कर ली है, नानी माँ ने भी कहा है कि अस्पताल का माहौल हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे, इसीलिए हम आपको घर के मिनी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है, आज शाम तक हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक आप और बच्चा दोनों थोड़ा रिकवर हो जाएंगे। ये सुनते ही रश्मि जल्दी से बोली थी, आस्था मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ तो करो। तब आस्था मुस्कुराते हुए बोली थी, मुझे पता था कि आप उठते ही ऐसा ही कुछ बोलेंगी, वो देखिए उधर। ये बोलकर आस्था ने जल्दी से पर्दा हटा दिया था और अगले ही पल रश्मि को अपना बच्चा दिखाई देने लगा। अपने बच्चे को देखते ही उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो पूरी तरह से भावुक होकर रोने लगी थी। तभी आस्था ने उसे प्यार से शांत करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोली थी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका सिजेरियन हुआ है, इस हालत में आपका रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें समझ में नहीं आता कि आपको डॉक्टर और हमें ये सब बातें आपको बार बार क्यों समझानी पड़ रही हैं। प्लीज़ रश्मि दीदी अब आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, वरना हमें बहुत बुरा लगेगा। तभी आकाश वहां आ गया था और आस्था और रश्मि की सारी बातें सुन चुका था। आकाश के आते ही रश्मि ने उसे देखा और दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था कि भले ही उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी खामोशी ही बहुत कुछ बयां कर रही थी। तभी आस्था ने जल्दी से आकाश की ओर देखकर कहा, आकाश भैया हम अभी आते हैं, तब तक आप रश्मि दीदी के पास बैठिए, हम अपनी चैंप का देखकर आते हैं। ये कहकर आस्था वहां से निकल गई थी ताकि दोनों को थोड़ा समय मिल सके। आखिरकार पति पत्नी के बीच का वो खास पल था और आस्था बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। जैसे ही आस्था बाहर निकली, सामने से अरमान अंदर आ रहा था और दोनों आपस में टकरा गए। इससे पहले कि आस्था गिरती, अरमान ने तुरंत अपनी मजबूत बाहों में उसे संभाल लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी आस्था हल्की सी शर्माते हुए अरमान से अलग हुई और बोली, ये क्या अरमान जी, हम आपकी बीवी हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, आप हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? ये सुनकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, सब कुछ हो, आई लव यू। ये सुनकर आस्था मुस्कुरा दी और बोली, अरमान जी समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या बोलूं, ऐसा लग रहा है कि हमें तो हमारे पति और उनका प्यार सूद ब्याज समेत वापस मिल गया है। ये कहकर आस्था ने एक बार फिर अरमान को कसकर गले लगा लिया और बोली, चलिए अब चलते हैं। दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे। तभी डॉक्टर ने अरमान को जैसे ही देखा, सर झुकाकर उसके पास आए और कहा, अब किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर रश्मि और उनका बेबी प्रॉपर ठीक है और आज शाम तक हम उन्हें आपके घर के मिनी हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, सो डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया। ये सुनकर आस्था और अरमान दोनों ने ही राहत की सांस ली। तभी आस्था ने तुरंत अरमान की ओर देखते हुए कहा, मैं घर पर फोन करके आती हूँ और सबको बता देती हूँ, ताकि रश्मि दीदी और छोटे से बाबू की वेलकम की अच्छी तैयारी हो सके। इतनी सारी परेशानियों के बीच ये छोटी सी खुशी हमें इतनी बड़ी खुशी दे रही है कि हम बता भी नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। ये कहते हुए आस्था ने अरमान की बांह को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। वही अरमान हल्की मुस्कान के साथ आस्था को देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, आखिर वो खाना किसने भेजा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। फिलहाल आस्था थोड़ी साइड में जाकर जल्दी जल्दी रौनक को कॉल करने लगी, क्योंकि रौनक के कई मिस्ड कॉल्स और वीडियो कॉल्स आ चुके थे। आस्था कई बार रश्मि और छोटे बाबू को वीडियो कॉल पर दिखा चुकी थी, क्योंकि रौनक का दिल पूरी तरह से बेचैन था। वो तो खुद उड़कर हॉस्पिटल आना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से नहीं आ पा रहा था। फिर भी वो घर पर किसी चीज की कमी नहीं होने देना चाहती थी। आस्था ने फोन पर उसे बताया कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, रश्मि दीदी अब काफी हद तक ठीक है और बाकी का इलाज घर के मिनी हॉस्पिटल में ही किया जाएगा, घर का माहौल रहेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वहीं नानी माँ भी उनके साथ होंगी, क्योंकि रश्मि को सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर था तो वो सिर्फ और सिर्फ नानी माँ पर ही था, इसीलिए वो अब उनके साए में ही रहना चाहती थी जब तक कि वो और उसका बेबी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो जाते। फिलहाल अब देर न करते हुए रश्मि को सहारा देते हुए धीरे धीरे सीधा बैठाया गया और वो संभल कर चलने की कोशिश करने लगी थी। वहीं तभी रौनक की नज़र कोने में मुरझाई हुई सी बैठी प्रियंका पर चली गई। रौनक जल्दी से प्रियंका के पास गई, उसका हाथ थामकर बोला, प्रियंका हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, जो तुम पर बीती है उस दुख का अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते, लेकिन प्रियंका प्लीज हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका दुख कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि तुम कोशिश तो कर ही सकती हो ना उसे भूलने की। रौनक ने पूरी तरह से प्रियंका को समझाना शुरू कर दिया था, तभी नानी माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, रौनक बिटिया जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है प्रियंका बेटी, और वैसे भी घर में नया मेहमान आने वाला है, सब मिलकर उसकी तैयारी करो और देखना सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और तुम्हारा अरमान जी जो है ना वो सब संभाल लेगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, और वैसे भी अब तुम्हें परेशान नहीं होना है। ये सुनकर प्रियंका की आंखें एक बार फिर भर आईं, तभी रौनक ने उसे गले से लगा लिया। मामा मामी यानी प्रियंका के माता पिता थोड़ी ही दूरी पर बैठे ये सब देख और सुन रहे थे, लेकिन मनोज जी की हालत ऐसी थी मानो उनके मुंह में जुबान ही ना हो, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके मन में डर बैठ गया था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिलहाल नानी माँ ने राधिका और वंशिका को इशारा किया, देर न करते हुए दोनों तुरंत प्रियंका के पास पहुंचे। राधिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रियंका उठो, अब रोना धोना बंद करो, और वैसे भी जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है रोना उसे चाहिए, तुम्हें नहीं। अब तुम्हें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है बिना किसी डर और परेशानी के, समझ रही हो ना मेरी बात? और हाँ, फटाफट जाओ चेंज करो और कपड़े बदलो, तुम्हें जिम्मेदारियां भी संभालनी है। देखो ना, रश्मि दीदी की जिंदगी में खुशी आई है, और उनकी ही नहीं ये पूरे परिवार की खुशी का समय है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बलून खुद फुलाएंगे, तो जल्दी से तुम ये काम करो, सारे बलून डेकोरेशन के लिए तैयार करो और उन्हें फुलाना शुरू करो, तब तक हम बाकी तैयारी करके आते हैं। कहीं ना कहीं सभी घर वालों, नानी माँ और बाकी लड़कियों ने मिलकर ये तय किया था कि प्रियंका को बिजी रखा जाए, उसे कोई ना कोई काम दिया जाए ताकि वो काम में लगी रहे और धीरे धीरे सब कुछ भूल सके और किसी भी बात को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। इसी सोच के साथ वे सभी प्रियंका को पूरी तरह व्यस्त रखना चाहते थे। वहीं नानी माँ ने रौनक की तरफ देखकर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है बेटा, प्रियंका जितना तुम लोगों के साथ खुले मिलेगी और साथ ही साथ काम में उलझी रहेगी उतना ही जल्दी वो अपने साथ हुई उन बुरी बातों को भूल पाएगी और किसी भी चीज की परेशानी उसे नहीं होगी।
तभी इस वक्त मामी यानी प्रियंका की माँ नानी माँ के पास आईं। उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आज तक ना जाने आपको कितना नीचा दिखाया, हमेशा आपको गलत समझा, कभी आपको वो मान सम्मान नहीं दिया जिसकी आप शुरू से हकदार थीं, लेकिन आप मेरी बेटी के लिए जो कुछ कर रही हैं सच में माँ जी आप महान हैं। ये कहते हुए वो रोने लगी। तभी नानी माँ ने प्यार से उनका हाथ थामा और कहा, बेटा परेशान मत हो, जो हो गया उसे आप बदला नहीं जा सकता, एक काम करो तुम भी घर के किसी काम में खुद को व्यस्त कर लो, और अभी तो दामाद जी ने भी मना किया है, तुम लोग अपने घर भी नहीं जा सकते, जब तक राजवीर और उसके जैसे दुश्मनों का पूरा खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो लोग कभी भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं। नानी माँ की बात सुनकर सीमा जी ने धीरे से अपनी आंखें झुका ली। नानी माँ ने उन्हें भी बाकी लड़कियों के साथ मदद करने के लिए कह दिया ताकि रश्मि और बच्चे के वेलकम की तैयारी अच्छे से हो सके। फिलहाल वहीं दूसरी ओर सीमा के जाने के बाद नानी माँ मनोज जी के पास आईं। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा जो हो गया सो हो गया, इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही किसी और की, शायद किस्मत को यही मंजूर था, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमें लगता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अभी इस बारे में किसी से कुछ मत कहना और मौका मिलेगा तो मैं खुद सबको सच्चाई बता दूंगी। ये सुनकर मनोज थोड़ा सा तड़प कर बोला था, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ, अगर ये सच किसी को भी पता चला तो काफ़ी सारी परेशानी खड़ी हो सकती है, और आप अच्छी तरह से जानती हैं दामाद जी का गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक है, और क्या कोई हमारी बात पर यकीन करेगा, और वैसे भी इन सब बातों को काफ़ी वक्त गुजर चुका है जी, जिस चेहरे को हमने कभी बेहद खतरनाक रूप में देखा था वही चेहरा इस तरह हमारे सामने हमारी बेटी के रूप में आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकती नानी माँ कैसा महसूस हो रहा है। तभी जल्दी से नानी माँ ने अपने होठों पर उंगली रख ली और मनोज जी को देखते हुए धीमे स्वर में बोली, मनोज धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, अभी घर में खुशियों का माहौल है और इस माहौल में हम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। वो थोड़ी देर रुकी और फिर गंभीर होकर बोली, प्रियंका की वो पुरानी बातें, हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी प्रियंका का ध्यान रखना है, अपनी बेटी का ध्यान रखना है, हमें किसी और से कोई भी मतलब नहीं है। फिर उन्होंने मनोज जी की आंखों में देखते हुए कहा, और मेरी बात ध्यान से सुनो, आस्था या दामाद जी को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, मौका मिलते ही मैं खुद आस्था को सारी बात बता दूंगी। नानी माँ ने ये बात थोड़े रहस्यमय अंदाज में कही। ये सुनकर मनोज जी ने हल्का सा सिर हिलाया, एक पल के लिए उन्होंने नानी माँ का हाथ थाम लिया और खुद को संभालने लगे, मानो नानी माँ ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत हों और वो हर हाल में उनका साथ देना चाहते हों। लेकिन तभी आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, और सुनते रहिए पॉकेट एफएम।